आत्म प्रज्ञानाम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्, मैं ब्रह्म हूं। फिर आगे का वाक्य क्यों आया, महावाक्य क्यों आया, तत्त्वमसि तत्त्वम असि, तू भी वही है। इसके पीछे एक रहस्य है, राज है। रहस्य यह है कि मैं भी पवित्र हूं तो आप भी पवित्र हैं। जो मेरा अस्तित्व है वही आपका अस्तित्व है। इसलिए अहंकार न जागे कि मैं ब्रह्म बन गया और आपको कुछ और मान बैठा। खंडित, एक खंडित विचारधारा आपके आत्म गौरव का खंडन करेगी। और जब आप अखंडित हैं तो सत्य का खंडन आप नहीं कर सकते। आप सब सत्य हैं। अब ये सत्य मनीषा नंद के नाम से प्रकट हुआ, बेटी के नाम से प्रकट हुआ, पुत्र के नाम से हुआ, लेकिन है सत्य वही। और जो सत्य है वो हमेशा जागृत है, चेतन है, वो कभी मरता नहीं, केवल रूपांतर होता है। आप चांदी में से घोड़ा बनाए, चांदी के अस्तित्व ने घोड़े का आकार लिया, आकार से घोड़ा हुआ। चांदी में से आपने हाथी बनाया, आकार से हाथी हुआ, लेकिन है तो अस्तित्व चांदी ही। आपका आकार मेरा आकार, व्यवहारिक दृष्टि से अलग है। मैं गुरु हूं, आप शिष्य हैं। आप पिता हैं, मैं पुत्र हूं। आप मां हैं, मैं बेटी हूं। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। ये व्यवहारिक संबंध में भी सत्य वही है। सत्य दो नहीं हो सकता, अस्तित्व दो नहीं हो सकता। इसलिए वेद ने कह दिया, एकम सत्य विप्रा बहुधा बदन्ते। ये आकार जो देख रहे हो ये अदर हो सकता है, अदरनेस नहीं है, आपसे अलग नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा, आपने सपना देखा, जागने पर तो सब कुछ आप ही थे ना। कहां पड़ोसी था, कौन डॉक्टर था, कौन इंजीनियर था। आपने सपना देखा, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर आए, सपने में आप ही थे, डॉक्टर आप ही बीमार थे। जगने पर कोई बीमार नहीं, जगने पर कोई डॉक्टर नहीं। आज भी आप बीमार पड़े, डॉक्टर आए, अपनापन, वो मेरा ही स्वरूप, मेरा हाथ, चोट लगी, मेरा हाथ ही ये मलहम लगा रहा है, भले वो डॉक्टर की बात है। ये चेतना आपकी जागृत होनी चाहिए। जब सत्य में स्थापित हो गए तो चेतना जागृत होगी, और सत्य चेतना जागृत होने पर भय निकल जाएगा। भय निकलने के बाद आनंद आएगा। आज आपको आनंद क्यों नहीं आ रहा है? जब हम सच्चिदानंद स्वरूप, शिव हम स्वरूप बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को ले रहा हूं। आप पुत्र हैं कि पुत्री, बालक हैं कि बालिका, सत्य में आप स्थापित हो गए, आपने अपने अस्तित्व को समझ लिया, उसको जागृत भी किया, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भय के दबाव में है। भय किस चीज का है? मेरा कल कैसे बीतेगा, कल कोई मेरी मदद करेगा कि नहीं, एक कल का विचार आपके अंदर आज भय पैदा कर दिया। जबकि आपके अस्तित्व में भय नहीं है। हम लोग जंगलों में रहे, हर तरह के पशुओं के बीच में से गुजरना पड़ा, और आपकी कोठी में आगे सांप काट करके देखा कि व्यक्ति में जब भय पैदा होता है, व्यक्ति जब भय के दबाव में आता है, पशु पंछियों को दुर्गंध का ज्ञान ज्यादा है, और जो भयभीत हो गया उसको भय दिलाने में वो मदद करते हैं। आप निर्भय होकर चलिए तो आपके शरीर में से सुगंध निकलती है, आप आनंद में रहिए। हमने कई किस्से पढ़े, हमने कई किस्से देखे, बालक नाग के साथ रहा, जंगलों में रहा, लेकिन जंगली पशुओं ने बालक को मारा नहीं, छोटे बालक पर नाग ने छाया की, बालक को नाग ने काटा नहीं, क्योंकि बालक आनंद में है। आज वैज्ञानिक कहते हैं किसी भी तरह से जब आपको भय पैदा हो जाता है तो भय में आनंद नहीं रहता, और आपके अंदर से दुर्गंध निकलती है, उसी दुर्गंध से वो जंगली जानवर समझ जाते हैं कि ये डरा हुआ आदमी है, और डरे हुए को और ज्यादा डराते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन जब आप निर्भय होते हैं, निर्भयता में आपके अंदर से सुगंध निकलती है, जब आप आनंद में होते हैं, पुत्र हैं कि पुत्री, नर हैं कि नारी, आपके अंदर से सुगंध निकलती है, उसी सुगंध से जंगली पशु नाग पहचान लेते हैं कि डरा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं डराते। ये भविष्य का चिंतन हमारे वर्तमान को खत्म कर रहा है, और आप आज हैं, आप आज के स्वाभिमान हैं, आप आज के गौरव हैं, लेकिन अहंकार ने, भय ने, क्रोध ने, लालच ने, हिंसा ने हमारे सत्य और चेतना पर पर्दा बनकर छा गए, इसलिए आनंद प्रकट नहीं हुआ। आप जब आनंद में रहते हैं, किसी से हाथ मिलाइए, किसी से बात कीजिए, कोई थकावट नहीं लगती। जहां आनंद है वहां किसी प्रकार के कोई थकावट नहीं है, जहां दबाव है वहीं थकावट है। आदमी कर्म से नहीं थकता, लेकिन कर्म में जब अरुचि पैदा हो जाती है तब आप थकते हैं। अरुचि जब पैदा होती है तो वहां आनंद नहीं रहता, और आनंद न रहने से आप थक जाते हैं। जो काम आप आनंद से करते हैं घंटों कीजिए, कोई थकावट नहीं। कई बार लोगों ने मेरे से पूछा, स्वामी जी आप इतने लंबे समय तक ध्यान में कैसे रहते हैं? उसमें आनंद आ रहा है इसलिए रहता हूं। आप मेरे से बातचीत करते हैं, एक लाख बे लाख तक बातचीत करेंगे, लेकिन कह दूं कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, आप कमरे में बैठ के ध्यान करें, तो 5 मिनट में ही भाग करके बाहर आ जाओगे, क्योंकि ध्यान में रुचि नहीं। तो अपने सत्य को पहचानो, अपनी चेतना को जागृत करो और आनंद को प्रकट करो, जिसे सच्चिदानंद कहा गया, जो आपका स्वरूप है। वो आनंद सहजता में आएगा। अब वही सच्चिदानंद जब राम के रूप में आया, वही सच्चिदानंद जब कृष्ण के रूप में आया, अब उसके जीवन को देखें। राम की पूजा हो रही है, मंदिरों में आरती हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, लेकिन वो सच्चिदानंद कितना सहज रहा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कठिन से कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति सहज रहेगा वो परिस्थिति पर काबू पा लेगा। ये मनोवैज्ञानिकों ने राम और कृष्ण के जीवन से हमें आपको एक विचार दिया। राम के सामने एक से एक विपत्ति आई, वनवास का, सीता हरण का, लेकिन आप मनोवैज्ञानिकों की बात का ध्यान करें, राम में क्रोध नहीं आया, राम तनाव में नहीं आए, राम पर दबाव नहीं है, रोज का रोज काम कर रहे हैं। सीता की खोज की बात लें, कभी इनसे पूछते कभी इनसे पूछते, रोज का रोज, लेकिन सहज हैं। यही मैं आपको चाहता हूं कि जब अपने स्वरूप को समझोगे, गीता का भी मुख्य केंद्र यही है। अर्जुन ने भविष्य की चिंता की कि मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में, युद्ध करूं कि ना करूं, किं कर्तव्य मूड हो गया। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने जब उसके अंदर सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान कराया और अपने ही पिंड में भगवान कृष्ण ने विराट को दिखा दिया, देख ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, उसकी रचना को देख, तू केवल निमित्त है, उसका भय चला गया। जब तक अर्जुन के मन में भय था, किंग कर्तव्य विमूढ़ था, कंफ्यूजन था। बड़े प्यार से आपकी बात करूं, अभी 2 दिन पहले फोन आया मेरे पर, महाराज जी बेटे को मेडिकल में भेजूं कि इंजीनियरिंग में। मैंने कहा पैसा क्यों पूछ रहे हैं, कहा आगे फायदा मेडिकल में कि इंजीनियरिंग में आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा आपका लड़का किस में जाना चाहता है, कहा तो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, और आप किस में ले जाना चाहते, कहा मेडिकल में, क्योंकि 100 साल का होगा तो भी इंजेक्शन लगाएगा तो 100 रुपया रोज तो कमाएगा। बेटा इंजीनियर बनना चाहता है और बाप का दबाव आ गया कि तू डॉक्टर बन, क्या डॉक्टर बनेगा, मारने वाला डॉक्टर बनेगा। यही कह रहा हूं, हम लोग आपको विचार देते हैं, माता पिता गुरु अपने अनुभव के आधार पर विचार दें, पुत्र पुत्री शिष्य अपना निर्णय करें। आप निर्णय मत दीजिए, हमारे संपर्क में कितने बच्चे आए, माता पिता का विरोध था, फिर भी मैंने कहा मैं गुरु हूं, कहता हूं आप इसे ये विषय में ले जाओ, और आज सब बहुत ही विकास कर गए। हम आप विचार देते हैं और विचार जगह निर्णय देते हैं, नहीं तुझे इसमें जाना पड़ेगा, और निर्णय का भय आ गया। भगवान कृष्ण ने विचार दिया और फिर पूछा अर्जुन तेरा निर्णय क्या। अभी अभी समझने की बात है, कर्मयोग भी ठीक लगता है, भक्ति योग भी ठीक लगता है, ज्ञान योग भी ठीक लगता है, लेकिन प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मामेकम शरणम ब्रज, इतना जानने के बावजूद भी अगर आप कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन का अर्थ क्या, दो तीन अच्छी चीजों में निर्णय नहीं कर पाना, आपकी बात बताऊं। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि लड़के को बड़ौदा पढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं कि बंबई पढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं अहमदाबाद पढ़ाओ। अहमदाबाद भी ठीक है, राजकोट भी ठीक है, बंबई ठीक है, तीनों में अच्छाइयां हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पाए, आपके अंदर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मीन्स यू थिंक एवरीथिंग इज राइट बट यू हैव नो पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन। अब ऐसी परिस्थिति में भी बताया गया कि जो श्रद्धा पात्र हैं, जिन्हें आप वडील मानते हो, जिनमें आप श्रद्धा रखते हो, उनसे पूछ लो। भगवान ने कहा चल मेरी शरण में आ गया, अब अगर मगर मत कर, मैं कहता कर्म कर, आनंद से विचार करो, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा उपदेश है। स्वरूप का ज्ञान होने से अर्जुन सहज बना और सहज बनकर के कर्म में लग गया। कबीर भी थे, सूरदास भी थे, मीरा भी थी, रविदास थे, आपके सामने प्रवचन करना बोलना भी कर्म है, सहज है। एक बार एक वाइस चांसलर मेरे से कहते महाराज जी, आप दो दो अढ़ाई ढाई घंटे कैसे बोलते, कोई किताब नहीं रेफर करते, मैं तो आधे घंटे परेशान हो जाता हूं। मैंने कहा मिस्टर वाइस चांसलर, व्हेन यू स्पीक यू आर अंडर द प्रेशर, यू आर अंडर द फियर। मैंने कहा वाइस चांसलर साहब, आप भय में हैं कि कहीं मैं गलत न बोल जाऊं, और मैं सहज हूं, इसलिए अपने आप दो घंटे का हो, तीन घंटे का हो, चार घंटे जितने का हो, जब मेरी थोड़ी उम्र व्यवहारिक दृष्टि से 35-36 साल का था, तो बड़ौदा में ही मैं 7.5 घंटे बोला, बड़ौदा में ही, उसके साक्षी हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मुझे साक्षी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भय नहीं है कि आप विश्वास नहीं करें। हाँ, भय होगा तो साक्षी लाऊंगा। मैं देर से आया, मैं मतलब बेटे की बात कर रहा हूं, मैं देर से आया, पिताजी पूछेंगे तो पहले से प्लानिंग भय में तैयार कर लिया कि कार खराब हो गई, राजदूत खराब हो गए, भय में ही सारी गड़बड़ी हो रही। अरे सच बोलने में क्या डर, आपका पिता अगर सच नहीं स्वीकार कर सकता तो भय वाली बात कब तक स्वीकार करेगा, ये हिम्मत तो रखो सच बोलने की। यही मैं आपसे चाहता हूं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़े प्यार से थोड़ा मेरा नाम सुने कि भाई पढ़े लिखे हैं ऐसे, तो आपको बताऊं, स्वामी जी आपसे बात करने में भय लगता है। मैंने कहा क्यों? अरे कहा हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि बहुत पढ़े लिखे हैं ऐसे हैं। मैंने कहा पढ़ा लिखा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संत हूं, संत के पास कोई आ सकता है, और मान लो कि मैं पढ़ा लिखा भी हूं तो मेरे पास तो सभी पढ़ के लोग आते हैं, आप क्यों डर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि 3 महीने पहले अब्दुल कलाम से मिलने में आपको भय नहीं था, लेकिन अभी मिलने जाओगे तो भय हो जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि राष्ट्रपति वाला भय पैदा हो जाएगा। मैं राष्ट्रपति से बोल रहा हूं आपको, नहीं कि मैं अपने ही अस्तित्व से बोल रहा हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय आत्मन, चाहे बुश से आपके से बात करनी पड़े या अब्दुल कलाम से, वो मेरे ही अस्तित्व हैं, सहज बनकर के बात करना। और यही बच्चों से कहता हूं, इंटरव्यू में जाते हो वो मेरा ही स्वरूप है, सहज बन के इंटरव्यू दोगे तो कभी वापस नकारात्मक ढंग से नहीं आओगे। आप विद्यार्थी हैं कि आप प्रोफेसर हैं, मैं एक छोटी, यहां बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं तो जा क्षमा मांगता हूं। एक बार मैं कॉलेज में चला गया, बस ऐसे जाके बैठ गया, मेरा विषय केमिस्ट्री रहा है, यहां केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर थे, मैं कहा कैसे पढ़ाते, उनको मालूम था कि स्वामी जी खूब पढ़े लिखे हैं और जानते थे, तो उनके अंदर इतना भय पैदा हुआ कि बिल्कुल मेरे पहले बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे थे, मैं ज्यों ही कमरे में बैठा गलत बोलना शुरू कर दिया। हाथ जोड़ के प्रोफेसर से कहा था, अरे जिसे आप जानते हो उसमें भय कैसे पैदा हुआ? तो मैं सबसे कहता हूं, आप पुत्र हो कि पुत्री, आप विद्यार्थी हो कि प्रोफेसर, आप कंपाउंडर हो कि डॉक्टर, आप मुख्यमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, जहां हो वहां भी भय न खाओ। और आपसे कहता हूं, जीवन के किसी क्षेत्र में भय रख के मत जाओ। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जीवन में सफलता लाना है तो भय को दफना दो, भय को राख बना दो। इसलिए आज कहता हूं कि क्रोध को, भय को, लालच को दफना दो और अपने स्वरूप को प्रकट करके जिस आकार में उसे रूपांतरित करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आपका अस्तित्व जो है ये भय को निकाल दो, दफना दो। एक युवक मेरे पास आया, कुछ शिकायत थी उसके पिता की कि घर में कभी प्लेट तोड़ता है, कभी शीशे तोड़ता है। खैर मैं तो अपने ढंग से बात करता हूं। युवक मेरे पास आया, मैंने कहा मैंने सुना घर में प्लेट तोड़ता है, कुर्सी तोड़ता है, शीशा तोड़ता है। कहे गुरु महाराज आपसे झूठ नहीं तोड़ता हूं। तो मैंने कहा मैं एक तोड़ने काम बताऊं? कहे आप गुरु जी आप तोड़ने काम बताएंगे? मैंने कहा हां, मैं गुरु हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा गुरु जी बताइए क्या तोड़ना है? मैंने कहा क्रोध को, भय को, लोभ को, अपनी कमजोरी को तोड़ सकते हो? ये सारे लक्षण कमजोरी के हैं जो आप तोड़ते हो। इसमें कोई जापान गया है? आजकल जापान में प्रयोग होता है होटलों में, जब आपको क्रोध आए होटल में चले जाओ और प्लेटें रखी है तोड़ो, उसका पैसा दे दो, तो भाई आपको क्रोध आए तो मैं प्लेटें मंगा के रखता हूं, मुझे पैसा मत देना क्योंकि तो लाने वाले आप हैं। क्योंकि वो क्रोध एक जब एक्शन में आया तो थोड़ी देर बाद शांत हुआ। ये जापान में आजकल प्रयोग चल रहा है। तो मैंने युवक से कहा, वही आपसे कहता हूं, अगर तोड़ना है तो अपने क्रोध को तोड़ो, भय को तोड़ो, अपनी कमजोरी को तोड़ो। ये क्रोध भय ये आपकी कमजोरी की निशानी है। और वही जैसे शुरू में कहा कि अगर आप कमजोर हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। रावण पर शंकर की कृपा है लेकिन उसका भय, उसका क्रोध नहीं गया, हमेशा डरता रहा। ऐसे सीता की खोज में गया तो कैसे जा, देखिए कहानी कहती है नवग्रह उसके यहां बैठे रहते थे, सारी सिद्धियां उसके पास थी, लेकिन जब सीता हरण के लिए जाता है तो उसका अंदर का अस्तित्व भय में आया कि मैं गलत कर रहा हूं, और भीगी बिल्ली की तरह जा रहा है। आप गलत काम कर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, इसलिए भीगी बिल्ली बन गए। किसके लिए गलत कर रहे हो, विचार करो। यही मैं आपसे कहता हूं। कि आपके अंदर जो है वो हम नहीं पहचान पा रहे और बेकार की चीजें ला करके अपना सत्यानाश कर रहे हैं। ये शिशुपाल की कहानी है, रावण की कहानी है, कंस की कहानी है। क्या इनमें शक्ति नहीं थी? शक्ति थी लेकिन सहजता नहीं थी। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, क्या थॉमस एडिसन, क्या न्यूटन, क्या आज के दो दो तीन दिन दिन तक लैब में रहते हैं, कितनी सहजता। यहां अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे क्षमा मांगते हुए, स्वामी जी आजकल इतने अच्छे साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? घड़ी 12 से 12:30 में 4 बार देखते हैं कि रोटी टिफिन अभी तक क्यों नहीं आया। इतनी सहजता की दो दिन तक प्रयोगशाला में रहते हैं और यहाँ 12 से 12:30 में 4 बार घड़ी देखा और नौकर आया तो इतने क्रोधित हो गए कि तेरे को रोज 20 रुपया देता हूं, तू 12 बजे क्यों नहीं आया? क्या वैज्ञानिक बनोगे? क्या कवि बनोगे? क्या इतिहास बनाओगे? तो प्रिय आत्मन, मैं बच्चों से भी कहता हूं, अभी 12वीं क्लास का रिजल्ट आया ना, वास्तव में ऐसी गड़बड़ी नहीं है जो लोग दुनिया भर की बात करते हैं, कुछ हमारी गलती है। मैं बताता हूं प्रैक्टिकल, हमने बच्चे से क्या, चलो मैं बाप बनता हूं, मैंने अपने बेटे से क्या कहा, देख बेटा तुझे मेडिकल में भेजना है, कम से कम 92 लाना है, मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता हूं, बेटा मेरे पास डोनेशन सीट का 10 लाख रुपया नहीं है। बेटे के सामने पेपर आया 10, 15, 25, 25, 45, 60, 65, अरे ये तो 75 हो रहा है, बाप कहां से 10 लाख लाएगा, बाप कहां से लाएगा 10 लाख, 92, 90 नहीं हो रहा है, ये भय पैदा हुआ तो जो 75 था वो 55 हो जाता। अभी कहते हैं 12वीं रिजल्ट खराब है, ऐसी कोई बात नहीं, वो सब बात मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन भय के कारण कहीं की बात है, लड़का हमेशा फर्स्ट क्लास आता था और सारे सब्जेक्ट में फेल। मुझसे कहा नहीं स्वामी जी कुछ बेईमानी हुई है, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा परिचय था मैं बताता हूं, सप्लीमेंट्री निकलवाया दिखलाया, मैंने कहा तेरी कॉपी है, तू लिखा है कि मैं लिखा? अब क्या होता है, भय में आपको लगता है कि आप ठीक लिख रहे हैं लेकिन सब गलत होता। हमारे प्रोफेसर बैठे इंटरव्यू लेते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे भयभीत हो गए, हैं अच्छे अच्छे प्रोफेसर प्रिंसिपल बैठे हैं, इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, बच्चा डर गया, कहते तेरा क्या नाम है, तो बाप का नाम बताता, अपना नाम नहीं बताता। जीवन के किसी क्षेत्र में आज मनोविज्ञान कहता है, चाहे गांधीनगर जाना है कि दिल्ली जाना है, मतलब राजनीति क्षेत्र में, या व्याप करोड़पति बनना है, हाथ जोड़ के कहूं मैं इस पक्ष में नहीं हूं, जब जयप्रकाश जी ने डाकुओं को विनोबा भावे की आज्ञा से किया था, उस समय रायपुर में 62 में गया था डाकुओं से मिलने के लिए, मैं तो आपसे कहता हूं, मैं कहता 2-4 दिन डाकुओं के पास रहो ना तो ज्यादा निर्भय हो जाओगे, बड़े प्यार से कह रहा हूं। अरे कई डाकू कुछ पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैं क्या, मुझसे क्या कहते, अरे क्या स्वामी जी वो डाकुओं की बात, अरे हम जंगल में घूमते थे आज तक सांप नहीं काटा और लोगों को सांप काटता है, ये डाकुओं की बात, लेकिन वही डाकू क्या बताते, हमने कोई ऐसा अपराध किया स्वामी जी जहां भय पैदा हुआ, वो बताया सब, और कहा जब भय पैदा हुआ तो मामूली बात में पकड़ा गया ऐसा, तो वही मैं आपसे कहता हूं, आप चोरी से लिख रहे हो, मैं बच्चों से खास जो भविष्य हैं, चोरी से लिख रहे हो, आप केमिस्ट्री के पेपर में हो, वहां पर जो टीचर रखे गए हैं वो हिस्ट्री के, केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं, लेकिन सर पीछे आ रहे हैं, भय आया और कुछ का कुछ और लिख गए, और फिर घर आ कहते मैंने तो बराबर तैयारी की थी लिखा है। जीवन के किसी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हो तो भय और क्रोध को, लालच को निकालो, आज यही मनोविज्ञान कह रहा है। राम के पास सामने एक से एक परिस्थिति आई, लेकिन न क्रोध आया न भय आया, रावण में शक्ति थी लेकिन वो बताया ना सीता हरण में, खुद अंदर समझ रहा है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, पुरानी बात है, स्वामी जी आप मानते हैं, आप तो वैज्ञानिक हैं कि जो कुछ मैं करता हूं भगवान देखता है, आप वैज्ञानिक हैं, ये बात सच है? मैंने कहा बेटे भगवान की बात अलग छोड़, अगर तू कमरा बंद करके शराब पीता है और कोई आकर दरवाजे पर आवाज करे तो समय शराब की बोतल छिपाता है कि शराब लेकर के दरवाजा खोलता, कहे हाँ स्वामी जी, वो छिपा देता। क्यों छिपाता है? भय के कारण। और शरबत पीता हो तो? अब यार देखिए, भय क्यों पैदा हुआ आप जानते हैं, गलत है। आप जानते हैं इसलिए आप भय में आ गए। प्यारे बच्चों, आप, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, बहुत माइंड आपके पास है। ये जितनी कापली तैयार करने में मेहनत करते हैं, उसकी आधी भी करो तो 90% आ जाए। लेकिन जुलाई से, जनवरी से नहीं, रेगुलर पढ़ो। जितने आईएएस आईपीएस में आते हैं, मैंने देखा जो मेरे से, मैं कहा रेगुलर पढ़ो, क्यों नहीं आओगे, क्या कमी है? तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, इसको निकालिए। आज मनोविज्ञान कह रहा है, किसको कोई भय नहीं। आया वही भय वाली बात। या देखिए, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का आठवां पुत्र तुम्हारी मौत बनेगा। नारद जी आके और समझा गए। अब देखिए, वो भय ने कितना उसका सत्यानाश किया। सारे बालकों को मारो, कंस वाली बात। उस भय ने, मृत्यु का भय, और कितनी हत्याएं किया, और उसका परिणाम। और हम आपसे कहते हैं नहीं, कंस में ताकत थी। ये मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं। तो आप विद्यार्थी की भूमिका में हैं, प्रोफेसर की भूमिका में हैं, कि डॉक्टर की भूमिका में हैं, कि सन्यासी की भूमिका में है। लेकिन अपनी भूमिका को ईमानदारी देना चाहते हो, निभाना चाहते हो, तो मन से क्रोध को, भय को निकालो, सहज बनो। जो सहज थे उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। कितनी शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है। हाँ, यहां पढ़े लिखे बताए, थॉमस एडिसन क्या पढ़ा, न्यूटन क्या पढ़ा, आर्कमिडीज क्या पढ़ा था, मीरा क्या पढ़ी थी, कबीर क्या पढ़े थे, आप काका क्या पढ़ा था, तुकाराम क्या पढ़े थे। आपके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति है। लेकिन वही बार बार दोहरा रहा, आपका भय, आपका क्रोध, आपका गलत विचार शक्ति का सत्यानाश कर रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं, यहां कुछ राजनीति वाले बैठे हैं, भाई बटाटा और पालक बेचते समय थोड़ा भय आएगा तो इतना नुकसान नहीं है। लेकिन राजनीति में जाना है, संन्यास लेना है, तो जो लोग भय खाते हैं, मेहरबानी करके राजनीति में वो सन्यासी न बने, नहीं सत्यानाश हो जाएगा। वैसे तो कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन खास करके क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की दो, आपके आपका पैसा लाकर में है ना, बैंक के दो चाबी है, एक बैंक मैनेजर के पास, एक आपके पास। इस देश को भी ऊंचा उठाने के लिए दो चाबी है, एक राजनीतिज्ञों के पास, एक संतों के पास। अब दोनों चाबी ठीक लगेगी तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हर समस्या का हल है। ये कहानी आती है, दरवाजे पर ताला लगा और चार विद्यार्थी आए, कहा यहां 40 चाबियां हैं, 30 सेकंड में जो ताला खोल देगा वो इसका मालिक बन जाएगा, इस कोठी का मालिक बन जाएगा। पुरानी कहानी है। 40 तीन कहते, 40 तो चाबियां हैं, 3 सेकंड का टाइम दिया, बेकार का प्रयास ही नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी, कोशिश ही नहीं करनी है। चौथा एक चाबी उठाया और जाके लिया, अरे ताला बंद ही नहीं था, हाथ लगते ही छूट गया। हे मेरे प्रिय आत्मन, कुछ समस्याएं ऐसी लगती हैं, लेकिन आपके हाथ में जो चाबी आए लेके जाओ, अरे हाथ लगते ही समस्या हल हो जाएगी, चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं। अब जा सोचो तो सही कि 30 सेकंड में कैसे ताला खुलेगा। लेकिन चौथन का नहीं, कोशिश तो करो। यही मैं आपसे कहता हूं, खलील जिब्रान के एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। आप अपने अस्तित्व को महान बना सकते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लड़का हो कि लड़की, यही बात खलील जिब्रान कहता है। आप अपने अस्तित्व को प्रकट कर सकते थे लेकिन आपने कोशिश नहीं की, आपने कोशिश नहीं की, इसलिए दुख है। यही मैं आपसे कहता हूं, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप महान हो, और आप महानता प्रकट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए गुरु को दुख हो रहा है कि आप क्यों मान बैठे कि आप महान नहीं है। शेर का बच्चा मान बैठा कि मैं तो बकरी हूं। तो मेरे प्रिय आत्मन, किसी भी जीवन की साधना में जो बहुत याद रिपीट किया, क्योंकि अक्सर जो मेरे से लोग कहते हैं, ये पूरा जगत आपका स्वरूप है, भय किससे खाते हो? आप मिनिमम में जाओ, समाधि में जाओ, तो जगत खत्म हो गया, केवल आपका अस्तित्व है। आप मैक्सिमम में जाओ, विराट में जाओ, कृष्ण की तरह अपने में पूरा विश्व देखो, तो किससे भय खाओगे? आप न शून्य बन रहे हैं, न विराट बन रहे हैं। आप अपने आप को न समाधि में ले जा रहे हैं, न विराट में ले जा रहे हैं, इसलिए परेशानी पैदा होगी। आप जो भी साधना करें करें, लेकिन जो उसकी प्रोसेस है, उसकी जो एक विधि है, वो मैंने आपके सामने रखा। आज इस गुरु पूनम पर एक आपको विचार दिया, निर्णय आपको करना, और मूल विचार यही है, आप सत्य हो, आप चेतना हो, आप आनंद हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। गलतियां करके, भूल करके अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया, क्यों? गलतियां करते ही समाज का भय आता है, कानून का भय आता है, माता पिता का भय। भय का मतलब कि आपने गलती की। एक बार मुझसे किसी ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे डरता हूं। मैंने कहा कोई गलती किया इसलिए डरता है, बाकी डरने की क्या जरूरत है? क्यों डरेंगे? और रावण की बात किया, किया वही, ऐसा कर्म क्यों करते? जा विचार करो, साधना में क्यों डरते हो? मरने, अरे आपका मरण है ही नहीं महाराज जी, समाधि लग गई तो? अरे समाधि तो एक दिन सबकी लगेगी। कितने लोग मेरे पास साधना करने आते हैं, कहते महाराज जी समाधि लग गई क्या होगा? मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, क्यों डर रहा? बैठा तो हूं लेकिन मेरा खाली गुरु में भी टोटल विश्वास नहीं है। कहते तो बाबा इसके आगे पीछे कौन है, मर गया तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कोठी वाला हूं, कोठी तो नहीं ले लेगा? एक बात प्यार से कहता। तो मेरे प्रिय आत्मन, आज इस गुरु पूनम पर, आज इस गुरु पूनम का पूरा प्रबंध अमरोली निवासी बिहारी लाल विश्वकर्मा ने किया, उनके साथ में उनकी पूरी टीम, मुख्य संजय भाई हैं, बहुत प्रेम से, बड़े भाव से उन्होंने किया, वो मैं ही जानता हूं। अगले साल की जो गुरु पूनम है, अभी अंबालाल साहब से बात हुई है, हमारे ही मूल यहीं गुजरात के हैं, पास के हैं, लेकिन अभी अमेरिका रहते हैं। हमने साहब से विचार विमर्श किया कि अगर वो अगले साल आते हैं तो उनकी गुरु पूनम में रखूंगा, उनकी उपस्थिति जरूरी है। तो 14 जनवरी इस साल सूरत में है, हमारे बाबू भाई पटेल, बीजी पटेल, गिरीश भाई वासिया वकील, राजन और एक अमेरिका के पात्र हैं रणछोड़ भाई। तो 14 जनवरी सूरत में है, तो सूरत का जेवन तो प्रसिद्ध है, इसलिए अभी से क्या कहना। तो आपको तो अभी से आमंत्रण देता हूं, पत्रिकाएं तो आती रहेंगे। तो 14 जनवरी सूरत में है, तब तक अंबालाल साहब से बातचीत हो जाएगी, और क्या निश्चय होता है 14 जनवरी सूरत में बता दूंगा। बाकी गुरु पूनम हमेशा यहीं पर होती है, पंजाब से अच्छे अच्छे लोग आए, दिल्ली से आए, मध्य प्रदेश से आए, बंबई है, पूना है, वापी है, बिल्ली मोरा है, नवसारी है, चिखली है, राजपिपला भी है, अंकलेश्वर है, पखाजन है, पाहज है, हमारा निकोरा है, सुकल तीर्थ है, तवरा है, भरूच है, अंगारेश्वर अपना गांव है, धर्मशाला है, कविठा है, सिंदोद है, झनौर भी है, और भी हैं, शायद नाम भूल जाऊं। तो सभी अच्छे अच्छे लोग आए हैं। हे मेरे प्रिय आत्मन, आज के गुरु पूनम पर अपने स्वरूप का हमेशा स्मरण करो। आप पवित्र हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, आप सत हो, चित हो, आनंद स्वरूप हो, और सचित आनंद के द्वारा आप अपने अस्तित्व का निर्माण करें, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, करोड़पति के रूप में। और एक अच्छा इंसान जब करोड़पति बनेगा, जब प्रधानमंत्री बनेगा, जब राष्ट्रपति बनेगा, तो उसे नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे व्यक्तियों को नियम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नियम बहुत बनते हैं तो केवल विधि से कोई हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अच्छा नहीं है। ये मैं संत हूं इसलिए कह रहा हूं। तो मैं आपके अस्तित्व को बोध करा करके, जैसे अर्जुन को अस्तित्व का बोध हुआ तो कर्म में लगा, सहजता से लगा। तो फिर से कहूंगा, आप अपनी कमजोरी, अपना भय, अपना क्रोध, जो कुछ मुझे दिया उसके साथ उसे भी दे दो और बादशाह बनकर जाओ। और बादशाह बनकर के पूरी प्रकृति पर, पूरे ब्रह्मांड पर राज करो। और राज करने का मतलब क्या बताऊं? अभी कुछ बात चल रही है कि पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसे भय से आप दुखी हो गए तो बादशाह कहां रहे? बादशाह का हर हालत में आनंद में रहना, सहज रहना। ईश्वर से हम आप प्रार्थना करेंगे वो बात अलग है। धरती कम से भय, वर्षा नहीं आ रही भय, सांप से भय, तो आप बादशाह कैसे? भयभीत आदमी बादशाह हो ही नहीं सकता। दो तीन दिन पहले लोगों ने कहा, महाराज जी आजकल लाइट बहुत काप आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10,000 आदमी तक तो मैं अकेला ही बोल लेता हूं, माइक की क्या जरूरत। और लोग मुझे पहले ही डराने लगे। अरे ठीक है, व्यवस्था हमारे लोग हैं, परिचित हैं, कहा उनसे जो व्यवस्था हुई उतना दिया, लेकिन आप दूसरों पर क्यों आधारित? अपने पैर पर चलो और वो सब कुछ आपके पास है। तो आज इस गुरु पूनम पर जो विचार दिया अपने स्वरूप का, स्वरूप का ज्ञान रख करके अपने जीवन को महान रूपांतरित करो। फिर से हे परमात्मा, आज जो यहां उपस्थित हैं, आसन लगाकर उनके हृदय में बैठो। हे परमात्मा, आप असीम हैं, आप में अनंत शक्ति है। और हे मेरे परमात्मा, जब आप आज के उपस्थित श्रोताओं में आप बैठोगे तो मेरा कोई श्रोता, मेरा कोई शिष्य, मेरा कोई शुभचिंतक छोटा नहीं है, कमजोर नहीं है, महान है। आप महान हैं, महान हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। इस स्वरूप का स्मरण करते हुए अपनी महानता को प्रकट करके व्यक्ति का निर्माण, ये समाज का निर्माण, और समाज का निर्माण ये राष्ट्र का निर्माण है। आइए हम आप अपने निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण करें, यही आज का शुभ संदेश है। ओम शांति शांति शांति।